अरहमनी जोया का अपने प्रति ऐसा रिएक्शन देखकर सकते में था। उसे तो लगा था कि जोया उसे देखते ही उससे प्यार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ भी पहले जैसा नहीं था। जहां पहले उसके लिए उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार था, वहां अब नफरत के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो उठा और फिर से उसने जोया को कंधों से पकड़ लिया और बोला, जोया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो कुछ। जोया ने उसके हाथ झटकते हुए बीच में ही रोका और बोली, बस मिस्टर अरहम खान, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बस करो अब। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा भरोसा तोड़ा है। सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुमने मेरे परिवार को मरवा दिया और मेरे साथ प्यार का नाटक किया। मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी हूँ। तुम लोगों की हंसी की आवाज़ें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। आई जस्ट हेट यू, जोया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अरहम जोया की इतनी शदीद नफरत महसूस कर चुका था। वो जानता था कि जो भी उसके बाबा ने किया है उसका बोझ उसे जीने नहीं देगा, लेकिन उससे उसका प्यार ही छिन जाएगा, उसने ये कभी नहीं सोचा था। जोया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अरहम को एक मिनट के लिए भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अरहम को लास्ट वार्निंग देते हुए कहा, अगर अब तुम यहां से नहीं गए तो मैं यहां से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर अरहम कांप गया। अरहम भीगी पलकों के साथ कहता है, नहीं प्लीज कुछ मत करना, मैं यहां से जा रहा हूं, प्लीज अपना ध्यान रखना। अरहम चला गया। जोया वहीं खड़ी हुई बेड का कोना पकड़कर बैठ गई और बहुत देर तक रोती रही। उनकी सारी बातें अमन सुन लेता है और वो ये जान जाता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है। अमन अंदर से काफी डरपोक किस्म का इंसान था। जोया और अरहम की सब बातें सुनने के बाद वो डर गया और उसको पता चल गया कि जोया हवेली की इकलौती मालकिन है जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुपी हुई है और उसके भाई बाप उसके मामा द्वारा मार दिए गए हैं। उसने जोया को लेके काफी सपने बुने थे, पर सच जानने के बाद वो उसका ख्याल अपने मन से निकाल देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जोया ने खुद को थोड़ा संभाला और घर के लिए निकलने की सोची, क्योंकि वहां उसकी नौकरी नहीं थी और आज काफी कुछ हो गया था तो वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। जोया अपना सामान लेने किचन की तरफ गई, वहां सभी उसका इंतजार कर रहे थे। इतने कम वक्त में उसने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। आयशा के साथ साथ सभी की आंखें भीगी हुई थीं। तभी वहां पर अरमान ठाकुर आ जाते हैं और जोया से बोलते हैं, मिस शनाया, अब आपकी तबीयत कैसी है? बदले में जोया तबीयत का ना बताकर उनसे केक के लिए माफी मांगती है। अरमान उसकी बात काट देता है और बोलता है, इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतने में आयशा बीच में बोल पड़ती है, सर ये बड़ी बात है, इस गलती की कीमत शनाया को अपनी जॉब खोकर चुकानी पड़ी। ये सुनकर अरमान शॉक हो जाते हैं, क्या आपकी जॉब चली गई? ओ माई गॉड, आई एम सॉरी मिस शनाया, मेरी वजह से? वेल नो प्रॉब्लम, आई हैव अ सोल्यूशन, डोंट वरी, मेरे पास आपके लिए नौकरी है, सो डोंट बी सैड। आप मेरा कार्ड रखिए और कल ठीक 9 बजे मुझसे यहाँ आकर मिलिए। कार्ड देकर अरमान चला जाता है और जोया कार्ड थामे घर आ जाती है। जोया घर आ जाती है और आज जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, वो बस अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। वो अरमान ठाकुर के कार्ड को लेकर बहुत देर तक देखती रही। आज जो हुआ वो रहीम को सब बता देती है। रहीम खान उन्हें तसल्ली देते हैं और कहते हैं, ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। अब जोया आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। अरहम की यादें उसकी पलकें भीगो गई थीं, पर उसने बेरहमी से आंखों को रगड़ा था और खुद से ही बोला था, अब और नहीं, बस उस इंसान के लिए अब मेरी आंखें नहीं रोएंगी। एक नई सुबह उसका इंतजार कर रही थी। उसको सुबह 9 बजे अरमान के एड्रेस पर भी तो जाना था। जोया एक नए आत्मविश्वास के साथ अरमान के ऑफिस के लिए निकलती है। अरमान द्वारा दिए गए एड्रेस को वो राजू को दिखाती है। राजू वो जगह पहचानता था। वो बोला, दीदी जी ये जगह हमने देख रखी है, आइए हम आपको अभी ले चलते हैं। जोया राजू के साथ चली जाती है। राजू एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रिक्शा रोक देता है और जोया से कहता है, लीजिए दीदी जी आपका स्पॉट आ गया। जोया हैरानी से एड्रेस देखते हुए, ओ माई गॉड, क्या हमें यहीं आना था राजू जी? हाँ दीदी जी, इस कार्ड में जो एड्रेस है वो यहीं का है। जोया नीचे उतर जाती है और हैरानी से ऊपर की ओर देखती है। उसको ऐसा लग रहा था कि ये बिल्डिंग आसमान को छू रही हो। उसने इतनी चौड़ी लंबी बिल्डिंग जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसको इस तरह से बिल्डिंग को घूरता हुआ देख वॉचमैन उसके पास आकर पूछता है, कौन है आप और किससे मिलना है, कहाँ जाना है? जोया थोड़ी घबराहट के साथ अरमान का कार्ड वॉचमैन को दिखा देती है। कार्ड देखकर वॉचमैन समझ जाता है कि इन्हें साहब ने ही बुलाया है, क्योंकि बहुत कम लोगों को अरमान ठाकुर अपना कार्ड देता है। वो उसे ऊपर जाने का रास्ता बता देता है और जोया थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ जाती है। अंदर लिफ्ट में जोया का कार्ड देखकर जोया को 10वें माले पर पहुंचा देता है। जोया पहली बार लिफ्ट में थी, डर के मारे उसका बुरा हाल था। चूंकि लिफ्टमैन भी साथ था तो वो अपना डर उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। बहरहाल वे लोग 10वें माले पर पहुंच चुके थे। लीजिए मैडम, 10वां फ्लोर आ गया। जोया बाहर निकली और देखते ही चौंक गई। वहां 100 के करीब लोग काम कर रहे थे। इतनी ऊंचाई पर इतने लोगों का काम करना उसको हैरान कर गया था। उसने देखा सभी की अलग अलग डेस्क बनी हुई थी, हर जगह कंप्यूटर रखे हुए थे और ये काफी लंबा चौड़ा हॉल सा था। सबके सब लाइन से काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मिलिट्री की कोई ट्रेनिंग चल रही हो। तभी जोया के पास एक बहुत खूबसूरत लड़की आई और बोली, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम?
जोया ने कुछ न बोलते हुए अरमान का कार्ड उसको दिखा दिया। ओहो, तो आप हैं मिशन आया। सर आपका सुबह से वेट कर रहे हैं, आप आगे से लेफ्ट वाले रूम में चली जाइए। ओके। जोया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और गेट पर जाकर नॉक करती है। अंदर से कमरे में आवाज आने पर वो अंदर जाती है। अंदर जाकर जोया देखती है कि ये ऑफिस से ज्यादा किसी 5-स्टार होटल का रूम लग रहा था। बड़े बड़े सोफे, एक तरफ शोकेस में सजे हुए चमचमाते मेडल जो शायद अरमान को उनके बिजनेस में सफल होने पर मिले थे, सब कुछ बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। अरमान, ओ मिशन आया, आप आ गई, थैंक यू सो मच आने के लिए। जोया, सर थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, फिर आप क्यों बोल रहे हैं। अरमान, छोड़िए मिशन आया, आप नहीं समझेंगी। बेहद सिंपल से सलवार कमीज में जोया उसे बेहद प्यारी लग रही थी। वो बार बार नजर बचाकर उसे देखे जा रहा था। अरमान उससे बातें करने का टॉपिक ढूंढने लगा था। हाँ तो मिशन आया, आपने कहाँ तक स्टडी की है। स्टडी का नाम सुनते ही जोया सोच में पड़ जाती है। उसने अपनी हायर एजुकेशन के बारे में तो बता दिया, पर साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स ना होने की बात भी बता दी। इस पर अरमान चौंका, क्यों, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्यों नहीं है, क्या हुआ है। जोया, मिस्टर अरमान, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ना होने की मेरी अपनी पर्सनल वजह है जो मैं नहीं बता सकती। अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स के मुझे जॉब नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया, मैं चलती हूँ। इतना कहते ही जोया खड़ी हो गई,
पर अरमान उसे रोकते हुए बोला, प्लीज वेट, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए मिस शनाया। अगर आपके पास पेपर्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसके बाद भी आपको जॉब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपकी नौकरी गई है और ये गिल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर ऐसा नहीं था, अरमान जोया को खोना नहीं चाहता था, वो पहली नज़र में ही उससे प्यार करने लगा था। एक जॉब का ही रीज़न था जो वो जोया को अपने करीब रख सकता था। अरमान की बातें सुनकर जोया को थोड़ी राहत हुई थी, इनफैक्ट वो खुशी से भर गई कि उसे नौकरी मिल गई है, अब वो अपनी माँ का ध्यान अच्छे से रख पाएगी। अरमान जोया से कहता है, मिस शनाया, आप आज से हमारे ऑफिस में काम करेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को ऑफिस की ओर से हर तरह की सुविधा दी जाती है। जोया बीच में ही टोकते हुए, सॉरी सर, मैं कुछ समझी नहीं। अरमान, मेरा कहने का मतलब है कि आपको ऑफिस की ओर से एक फ्लैट और गाड़ी दी जाएगी जिसमें आप डेली ऑफिस आया जाया करेंगी, और साथ ही साथ आपको ऑफिस के लिए 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अगले 6 महीने आप कहीं और काम नहीं कर सकती, आपको यही काम करना होगा। बोलिए, आपको मंजूर है। जोया ये सब सुनते ही सोचती है, ऊपर वाला भी न जाने किस किस रूप में मदद करता है। रहीम के एक कमरे के घर में बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था, और यहाँ तो काम के साथ साथ रहना, गाड़ी सब मिल रहा था। जोया को इन ख्यालों में गुम देख अरमान थोड़ा खांसते हुए, हाँ तो मिस, क्या सोचा आपने। जोया बिना टाइम वेस्ट किए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। ओ वाओ, कंग्रेचुलेशंस मिस शनाया एंड वेलकम टू द ऑफिस। थैंक यू सर। तभी अरमान कॉल करके किसी को अंदर बुलाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है और एक बेहद मॉडर्न लड़की अंदर आती है। अरमान उससे कहते हैं, मिस रोजी, इनसे मिलो, ये है मिस शनाया जो आज से आपके साथ काम करेंगी और सीधा मुझे असिस्ट करेंगी। ओके। रोजी अरमान की पर्सनल सेक्रेटरी थी। अरमान को इतना चहकता हुआ देखकर जोया काफ़ी सोच में थी। हमेशा सख्त, गंभीर और बात बात पर रोल रेगुलेशन फॉलो करने वाले उनके बॉस को आज क्या हो गया था। आज वो मुस्कुरा रहे थे। रोजी ने 6 सालों में पहली बार अरमान को ऐसे देखा था। रोजी शनाया को लेके अपने केबिन में चली जाती है और काम समझाने लगती है। जोया जल्दी ही सारा काम सीख लेती है। रोजी उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। शाम हो चली थी, जाने से पहले जोया को ऑफिस का आइडेंटिटी कार्ड और फ्लैट, गाड़ी की चाबी दे दी जाती है और वो खुशी खुशी घर के लिए निकल जाती है। उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। बाकी अगले भाग में।